नमस्कार दोस्तों, कई दिनों से मैं इस साइट में मज़ेदार कहानियाँ पढ़ रही हूँ। पढ़ते पढ़ते अक्सर मेरा शरीर गर्म हो जाता है, दिल जोरों से धड़कता है और जूत गीली हो जाती है। बड़ा मज़ा आता है, उससे भी मज़ा आता है खुद सेक्स करके। जूत चुदवाते वक्त मैं सातवें आसमान पे होती हूँ। पर आप जानना नहीं चाहोगे मुझे चूतता कौन है? मेरा ही छोटा भाई है, मुझसे 1.5 साल छोटा है। सब घर की बात है, बिल्कुल टेंशन फ्री। अब मैं 2 साल पीछे चलती हूँ, जब मैं कॉलेज में 3rd ईयर में पढ़ती थी और मेरा भाई 1st ईयर में। भाई कई महीनों से जिम जाता था और अपनी बॉडी बनाना था। महीनों की कसरत से उसका बदन बढ़िया मस्कुलर बन गया, ऊपर से चुस्त टी शर्ट पहनकर बहुत स्मार्ट लगता था वो। मुझे मालूम था कि उस पर बहुत सारी लड़कियां फिदा हैं, इससे मुझे खुशी होती थी। हालांकि भाई को मैं हमेशा हैंडसम और सेक्सी समझती थी, मेरा उसकी तरफ कोई सेक्शुअल अट्रैक्शन नहीं था। उसकी तरफ मेरा रवैया ऐसे ही था जैसा आम लड़कियों में उनके छोटे भाइयों की होता है। हमारे पड़ोस में मेरी सहेली चंद्रिका थी, वो अक्सर मेरे घर शाम को आती थी और हम खूब गप्पे मारते थे। एक दिन मैंने ख्याल किया कि वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही है। तभी भाई जिम से घर वापस आया, उसने अपना बैग टेबल पर रख दिया और मुझसे कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ सिनेमा देखने जाने वाला है। ये कहते हुए वो बाहर निकल गया। दरवाजे में रुककर एक बार पीछे देखा और कहा, कैसी हो चंद्रिका दीदी? मैंने देखा चंद्रिका तो हड़बड़ा गई। भाई जवाब सुनने पहले निकल गया। तभी किचन से मम्मी ने पुकारा, अर्चना चाय ले जा। किचन में जाकर मैं कपों में चाय डालने लगी। मैं जरा हैरान थी कि भैया को देखकर चंद्रिका इतनी नर्वस क्यों हो जाती है। फिर मैंने सोचा कि चंद्रिका हमेशा शाम को ही क्यों आती है जब भाई जिम जाता है। वो दरवाजे के पास वाली कुर्सी पर ही बैठती है, उसका एक आंख दरवाजे पर टिका रहता है, ऐसा लगता है वो किसी के आने का वेट करती है। मैंने मम्मी को एक कप चाय दी और हमारे 2 कप चाय ट्रे लेकर बाहर वाले कमरे में चली गई। चाय पीते पीते मैंने चंद्रिका से पूछ ही लिया कि वो भाई को देखकर इतना नर्वस क्यों हो गई। पहले तो उसने आनाकानी की, पर मैंने भी उसे बार बार पूछा। तब उसने मुझे बताया कि मेरे भाई को देखकर वो अपने आप को संभाल नहीं पाती, उसका जिम वाला शरीर और पसीने भरा चुस्त टी शर्ट देखकर वो पागल हो जाती है। उसके शरीर से आते हुए पसीने की गंध सूंघकर नशा करती है। मुझे तभी याद आया कि मैंने अक्सर चंद्रिका को लंबी लंबी सांसें लेते हुए देखा था जब भाई होता है। मैंने कहा, ये सब अपने दिमाग से निकाल, वो हम लोगों का छोटा भाई है। तो चंद्रिका ने कहा, भाई होगा 13, हम क्या करें, हम तो कब से उसे अपने पूरे शरीर देने की आस लिए बैठे हैं, और तुम तो सहेली होते हुए भी मदद करोगी ऐसी आशा नहीं कर सकते। ये कहते हुए वो उठकर चली गई। मैं हैरान थी, मुझे ये तो पता था कि मेरे भाई पर बहुत लड़कियां मरती हैं, मगर मेरी फ्रेंड चंद्रिका जैसी लड़की भी होश खो बैठेगी, ये मेरी सोच के बाहर था। मैंने अपनी किताबें निकाली और पढ़ने लगी, लेकिन बार बार मुझे चंद्रिका की ही बात याद आती। भाई के शरीर में चिपका हुआ पसीने से भीगा टी शर्ट मुझे भी याद आता। रात को जब भाई लौटा, मम्मी पापा सो चुके थे। मैंने भाई के लिए खाना परोसा और दरवाज़ा बंद करने चली गई। तब तक भाई अपने कपड़े उतार कर टॉवल ओढ़ कर नहाने चला गया। भाई की एक बहुत बुरी आदत है कि वो अपने कपड़े उतार कर फर्श पर फेंक देता है। मैं रोज़ उसे डांट कर उसके कपड़े फर्श से उठाकर वॉशिंग मशीन में डालती हूँ। आज भी मैंने वही किया तो मुझे चंद्रिका की बात याद आ गई। मैंने उसकी टी शर्ट, जिसको मैं हमेशा बदबूदार कहती थी, अपने नाक के सामने लाकर एक लंबी सांस ली तो एक अजीब सा एहसास हुआ। लेकिन तभी बाथरूम की आवाज़ आई तो मैंने जल्दी से सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए। जब वो नहाकर निकला तो सीधा खाने के टेबल पर आया। हमेशा की तरह आज भी उसने सिर्फ एक पजामा पहना था। वो खाता रहा, मैं उसे निहारती रही। आप ये कहानी antarvasana.com पर सुन रहे हैं। जिम जाने से कासर उसके शरीर पर साफ दिख रहा था। इस तरह मन से अगर वो कसरत करता रहा तो बहुत ही जल्दी 6 पैक हो जाएंगे उसके। मैं सोच रही थी कि अगर चंद्रिका मेरे भाई को ऐसे देखे तो शायद अपने कपड़े उतारकर उसके पाँव में गिर जाए। मुझे मालूम नहीं था कि मैं अपनी ही सोच चंद्रिका के ऊपर डाल रही थी। खाना ख़त्म करके भाई अपने कमरे में चला गया। मैं टेबल साफ़ करके अपने कमरे में चली गई और लेट गई। वैसे तो मुझे काफ़ी जल्दी नींद आ जाती है, लेकिन आज न जाने क्यों नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। काफ़ी देर तक जब नींद नहीं आई तो मैं उठी और वॉशिंग मशीन की तरफ चल दी। मशीन से मैंने भाई का टी शर्ट बाहर निकाला और अपने बेड में लौट आई। अब टी शर्ट को नाक में लगाकर मैं ज़ोर ज़ोर से सूंघी। मुझे बहुत मज़ा आया, दिमाग कंट्रोल के बाहर था। मैं सोचने लगी कि जो एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ करने का सोचती है और भाई से कभी नहीं, उसका खुला हुआ सीना मुझे लिपटने की इच्छा होने लगी। तब मैं उसका टी शर्ट अपने सीने से घिसने लगी। धीरे धीरे ये टी शर्ट मेरे कपड़ों तले घुसने लगा, कभी मेरे बूट्स के ऊपर, कभी पेट में, फिर मेरी पैंटी के अंदर। तभी अचानक एक ख्याल आया, मैं फिर से वॉशिंग मशीन के पास गई और टी शर्ट को वहीं रख दिया। मैंने भाई की चड्डी निकाली और अपने बिस्तर में चली गई। मुझे पता नहीं कौन सा भूत सवार था, भाई की चड्डी को अपने चेहरे पर रगड़ने लगी जहाँ पर उसका लंड रहता था। चड्डी की उस अंश को कभी होठों से रगड़ती, कभी उस पर जीभ चलाती और फिर चूसने लगी। फिर मैंने अपने बदन पर रगड़ना शुरू कर दिया और आखिर में चट्टी से अपनी जूत रगड़ने लगी। जूत गीली हो गई थी। मेरे दिमाग में एक नई शरारत सूझी। मैं फिर उठी और अलमारी की तरफ गई। इस बार मैंने उसकी एक साफ चट्टी निकाली और बिस्तर में लौट आई। गीली जूत से निकलता रस मैंने उसकी चट्टी से पूछा। मैं चाहती थी कि जब वो ये चट्टी पहने तो उसका लंड तक मेरी जूत का रस पहुँच जाए। इस तरह उल्टी सीधी हरकतें करते हुए मैंने रात गुजारी। अगले दिन मैं कॉलेज नहीं गई, जाते भी कैसे, सारी रात तो सोई नहीं थी। अब मुझे अपने पिछले रात की हरकतों पर शर्म आने लगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकती हूँ। मैंने तय किया कि मैं अपने आप को संभालूंगी और ऐसा कुछ फिर नहीं होने दूंगी। मैं दोपहर को जल्दी खाना खाकर सो गई और पता भी नहीं चला कब शाम हो गई। जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि भाई कॉलेज से लौटकर खाना खाकर जिम के लिए निकल गया। तभी हर शाम की तरह चंद्रिका भी आ गई। उसको देखते तो मेरे शरीर में आग लग गई। एक तो वो बहुत खूबसूरत और सेक्सी थी और वो भाई के साथ सेक्स करना चाहती थी। मुझे पता था वो मेरे भाई को मुझसे पहले पटा लेगी। जितनी आसानी से वो मेरे भाई पर डोरे डाल सकती थी, मैं नहीं कर सकती थी। जैसे ही ये बात मेरे दिमाग में आई, मैं तो आग बबूला हो गई। मैंने चंद्रिका से सीधी बात की कि वो मेरे घर पर ना आए और साथ में उसे बहुत खरी खोटी भी सुनाई। मुझे मालूम था कि अब उसके लिए मेरे भाई को पटाना मुश्किल होगा, लेकिन वो काम मैं कैसे करूं, यही मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। सवेरे जो थोड़ी पश्चाताप हुई थी, वो बात तो दिमाग से ही निकल गई। अब भाई को पूरी तरह पाना मेरा लक्ष्य था, लेकिन कैसे। आप ये कहानी अंतरवासना.com पर सुन रहे हैं। मुझे मालूम नहीं था इसका भी मौका मुझे बहुत जल्दी मिलने वाला था। रात में डिनर के वक्त मम्मी ने कहा कि वो और पापा गांव जाने वाले हैं। पापा को ऑफिस के काम से हमारे गांव के पास ही जाना था। मम्मी ने भी मौका पाकर कुछ दिन के लिए गांव जाने का इरादा कर लिया और हम दोनों को कॉलेज के कारण यहीं रहना था। मम्मी ने मुझे पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ा दी और भाई से कहा कि वो मेरी हर बात सुने। मैं मन ही मन सोचने लगी, कब सुनेगा मेरे मन की बात। खाने के बाद मैंने मम्मी को पैक करने में हेल्प की और फिर बिस्तर पर जाकर लेट गई। लेकिन नींद तो आ ही नहीं रही थी। एक हफ्ते तक भाई मेरे पास अकेला रहने वाला था। अब किसी तरह जल्दी से जल्दी उसे मेरे बिस्तर में लाना था। मेरा दिमाग अब स्कीम बनाने लगा। स्कीम बनाता और बेकार समझ कर फेंक देता, फिर उल्टी सीधी स्कीम बनाते बनाते मैं सो गई। अगले दिन सवेरे घर में भगदड़ मच गई। सुबह 9 बजने से पहले मम्मी पापा को घर से निकलना था। उससे पहले उन दोनों को धोकर नहा धोकर रेडी होना था। मुझे उनके लिए नाश्ता बनाना था। 9 बजे के आसपास भाई ने दोनों को बस अड्डे पर बिठा दिया। मैं भी दोपहर का खाना बनाने में बिजी हो गई। कुछ देर बाद हमारी काम वाली आई, काम में लग गई। बस निकलते ही भाई भी घर आ गया और सीधा किचन में आया। हम दोनों बातें करने लगे। अचानक मैंने देखा कि भाई की नज़र बार बार माया की ओर जा रही है। जब मैंने ध्यान से देखा तो ख्याल किया कि माया अपनी ब्लाउज के ऊपर वाला बटन खोल कर रखती थी, तो भाई भी उसका नज़ारा लेता था। फिर शरीर में आग लग गई। मैंने माया को फटकारा और कहा, जल्दी से अपना काम खत्म करो और निकलो। मुझसे एक काम वाली आगे निकल गई, ये सोचकर मुझसे रहा नहीं गया। काम खत्म करके जब वो निकल रही थी तो मैंने कहा, जब तक मम्मी ना लौटे उसकी छुट्टी, वो भी उन दिनों काम में ना आए। उसका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि छुट्टी मिलकर वो खुश नहीं थी। माया के जाने के बाद भाई ने पूछा कि मैं परेशान क्यों हूँ। जब मैंने उससे पूछा कि वो मुझे परेशान कब देखा, तो उसने माया की बात बताई। उसने माया पर मेरी नाराज़गी का कारण पूछा। मैंने सीधे उससे कहा कि मुझे उसका और माया का बर्ताव बिल्कुल मंजूर नहीं। मैंने कहा कि चाहे माया का ब्लाउज का बटन खुले या माया उसके बूब्स को घूर कर देखे, मैं सब कुछ देख रही थी। वो चुप हो गया और उसने आंखें नीचे कर ली। मैंने कहा, देख सोनू, इन लड़कियों से हमेशा सावधान रहना। इनका काम ही तुम्हारे जैसे लड़कों को फंसाना है, किसी तरह प्रेग्नेंट होकर शादी कर लेना है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि इस घर की बहू बनना उसके लिए कितनी बड़ी बात है, इसलिए तो बिल्कुल दूर रहो। उसका चेहरा देखकर मैं समझ गई कि वो फिर कभी माया के पास नहीं जाएगा। चलो, दो बड़े प्रतिद्वंदी से पाला छूटा। आगे की कहानी की प्रतीक्षा जरूर कीजिएगा दोस्तों।